सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् साहुवज्रायिरिये अरहन्ते वन्द्यूणसिद्धेवि जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक जो है तृतीय खंड बंद स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए। 68 देखिए, हमने यहाँ प्रकृतियों की जो कोई लंबी चौड़ी आदि देखी थी, उसमें जो आठवें गुणस्थान के छठे भाग में विच्छित्ति होने वाली कितनी ही प्रकृतियां यहाँ ली हम, उसमें आहारक द्विक और तीर्थंकर को छोड़कर अन्य 27 प्रकृतियों को यहाँ एक साथ लिया है। इनके बंधक कौन और अबंधक कौन है, तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से आठवें के छठे भाग तक बंधक ऐसा कहा था। ये तीन प्रकृतियां अलग ली इसलिए कि वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से नहीं बनती है, तीर्थंकर और आहारक द्विक, इसलिए उसको यहाँ उसके साथ नहीं लिया। उसमें से हम देखते आ गए हैं हाँ, आपका प्रश्न है तीर्थंकर प्रकृति कौन सी है, तो उसको निरंतर बंदी कहने में आता है। निरंतर बंदी की डेफिनेशन ये है कि अंतर्मुहूर्त तक तो कंटिन्यूस बंधेगी ही, जैसे आयु भी निरंतर बंदी है, बनती है कभी कभी, परंतु वो प्रतिपक्ष वाली नहीं है। प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के कारण जो अंतर पड़ता है वैसा अंतर उसमें नहीं है, इसलिए उसको निरंतर कहते हैं। तो 67 पेट पर हमने कल देखा था कि देवगति प्रायज्ञानपूर्वी वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग जो है वो सभी गुणस्थानों में उसका बंध परोदय से होता है, क्योंकि देव है वे देवगति को देवायु आदि वगैरह को नहीं बांधते हैं, इसलिए देवगति प्रायज्ञानपूर्वी उसी के साथ वैक्रियक अंगोपांग बनता है। वैक्रियक अंगोपांग नरक गति के साथ भी बनता है, परंतु देवों को वो भी नहीं बनती है। देवों को देव गति और नरक गति दोनों का ही बंध नहीं है, वैसे नारकियों को भी नरक गति और देव गति दोनों का बंध नहीं है। तो वे दोनों गति के जीव बांधेंगे तो मनुष्य गति या तिर्यंच गति बांधेंगे, इसलिए यहाँ कहा देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रियक अंगोपांग का जो बंध होता है वो परोदय से ही होता है, स्वोदय से नहीं, देवगति के उदय में उसका बंध नहीं होता। फिर उसके बाद हमने देखा था पंचेंद्रिय जाति त्रस बादल और पर्याप्त प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय से भी परोदय से भी होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में उदय जो है एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जाति का उदय होता है, और किसी भी जाति वाले को पंचेंद्रिय जाति का बंध हो सकता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तो स्वोदय से भी बंध है परोदय से भी बंध है। वही बात त्रस बादर और पर्याप्त के लिए भी हमने ये कल देखा था, उसको जरा फिर दोबारा देख रहे हैं। बाद में जो है बाद में ने दूसरे गुणस्थान से ऊपर, दूसरे गुणस्थान के ऊपर यानी दूसरे गुणस्थान में और ऊपर द्विंद्रियादि का जाति का उदय नहीं है, बंद तो नहीं है, हम स्वोदय से के परोदय से उसकी चर्चा चल रही है, इसलिए वहाँ उनका उदय नहीं। उसका अर्थ क्या है? उन जीवों को ये ऊपर के गुणस्थान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा गुणस्थान वाला कहाँ से आए, तो चौथे में से या ऊपर से गिर कर आएगा, तो वहाँ सम्यक्त्व सहित कौन जाएगा? तो संगी पंचेंद्रिय जाएगा। इसलिए ये द्वितीय आदि जो गुणस्थान है वो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी में नहीं पाए जाते, इसलिए उनका उदय यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ जो पंचेंद्रिय जाति आदि कर्म बनते हैं वो स्वोदय से ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ परोदय है ही नहीं है। अब अन्य जो प्रकृतियाँ हैं, समचतुरस्र संस्थान का जो बंध है, प्रशस्त विहाय गति का और सुस्वर का, सभी गुणस्थानों में स्वोदय और परोदय दोनों से होता है, क्योंकि उसके प्रतिपक्षी का भी उदय चलता ही रहता है 13वें तक भी। अब सुभग और आदेय प्रकृतियों का बंध जो है 4थे गुणस्थान तक स्वोदय से और परोदय से होता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिपक्षी है परोदय जिसको हम कहते हैं, जो दुर्भग और अनादेय है, उसका उदय 4थे तक ही संभव है। 4थे गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति होती है, बाद में उदय किसका होगा? सुभग का और आदेय का ही होगा, इसलिए वहां उसके पश्चात स्वोदय से ही बंधेगी। उसके बाद कल हमने बहुत मेहनत जो की थी उपघात परघात वगैरह के बारे में, तो ये कौन सी प्रकृतियों की बात है, तो स्वोदय परोदय से क्यों कौन कौन सा है, तो उपघात का, परघात का, उच्छ्वास का और प्रत्येक शरीर का। और उसके लिए कंडीशन है पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में बंध जो है वो स्वोदय से भी है और परोदय से भी है। अभी उसमें से एक एक को लेकर हम स्वोदय परोदय कैसे होता है उसको देखेंगे। जैसे उपघात का बंध होता है, नीचे उसमें, तो उपघात का उदय विग्रह गति में नहीं है, फिर भी वहां विग्रह उपघात का बंध होता है, उसका अर्थ है वो परोदय में भी बनती है, यानी स्व उदय नहीं होने पर भी उसका बंध होता है। उसी प्रकार प्रत्येक शरीर नाम कर्म का जो उदय है वो विग्रह गति में नहीं पाया जाता, जहां उसका वो आहार पर्याप्ति वगैरह शुरू होगी, जहां जन्म लेना है वहां पहुंचने पर प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है, तो उसके उदय के अभाव में भी वो बनती तो है, वहां विग्रह गति में भी उसका बंध होता है, इसलिए उसको कहते ये परोदय से बनती है। बाद में स्वोदय में तो बनती बनती है, परंतु परोदय से भी बनती है, यानी जहां स्वोदय का नहीं है, स्वोदय नहीं है, वहां भी वो बनती है। ये उपघात की बात की, प्रत्येक शरीर की बात की। अब जो परघात और उच्छ्वास है, अपर्याप्त अवस्था में उसके उदय का अभाव है। परघात का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, और उच्छ्वास का उदय उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। उसका उदय नहीं रहने पर भी उस काल में ये प्रकृतियां बनती तो है, क्योंकि हमने देखा जो लब्धि अपर्याप्तक जीव है उनके भी ये प्रकृतियां तो बनती ही है, तो इसका अर्थ क्या होता है, वो अपर्याप्त अवस्था में भी बंध चल रहा है। इस तरह हमने देखा ये जो प्रकृतियां हैं वो स्वोदय से भी बनती है और परोदय से भी बनती है। उसमें एक हमने बात देखी थी छठे गुणस्थान के लिए, परघात और उच्छ्वास ये प्रमत्त गुणस्थान में स्वोदय से भी बनती है और परोदय से भी बनती है, क्योंकि प्रमत्त गुणस्थान में आहारक की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था हो सकती है, तो वहां भी जब आहारक शरीर की रचना चल रही है तो वहां भी 6 पर्याप्तियां होती हैं, और उसमें भी आहारक संबंधी शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात का उदय चालू होता है, आहारक संबंधी उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उच्छ्वास का उदय होता है, परंतु तब तक बंध तो चल ही रहा है, इसलिए इसको स्वोदय और परोदय दोनों से बंध होता है ऐसा कहा। ये कल जरा बहुत लंबा लंबा चला ना, ये ख्याल में नहीं आ रहा था कहाँ उसका उदय है कहाँ नहीं है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात और निर्माण, इनका निरंतर बंध है। अभी वो स्वोदय परोदय की बात हो गई, अभी नया प्रश्न कि कौन से निरंतर बंदी है क्या सांतर बंदी है, तो उसकी बात है। निरंतर बंदी में कौन कौन से लिए, ये याद है, ये कहाँ से लिस्ट हमने यह इसको पढ़ा था एक साथ। हाँ, 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों में ये गिनी थी हमने, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तो 19 देखी, मिथ्या तो 16, कषाय भय जुगुप्सा वो 19, और रिमेनिंग ये, ऐसे मिलकर हमने 47 देखी थी। जो जो ध्रुवबंदी होती है वो निरंतर बंदी होती है, क्योंकि यहाँ कोई ये बंधे या प्रतिपक्ष बंधे ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, हर समय ये बंध रही है। तेजस कारमान भी, स्पर्शादि ये चार भी, निर्माण भी, अगुर लगुर उपघात, यानी कैसी भी अवस्था क्यों न, विग्रह गति में भी क्यों न हो, ये तो निरंतर बंधने वाली प्रकृतियाँ अनादिकाल से बनती चली आ रही है। जब तक विचिति नहीं होती तो 8वें गुणस्थान तक निरंतर यानी सदैव ही बंधेगी, क्योंकि वो ध्रुवबंदी है, क्योंकि ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। अब अन्य प्रकृतियों की बात करते हैं। देवगति, देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग, इनका बंध मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्य दृष्टि गुणस्थानों में सांतर निरंतर है। अभी उसका कारण बताते हैं। सांतर कब होती है, जिसके प्रतिपक्ष प्रकृति होती है, जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में चार गतियों में से कोई एक गति बंधेगी, तो देव गति बंधेगी तो ऑप्शनल, उसके लिए प्रतिपक्ष भी है, जैसे परिणाम होगी वैसे अन्य अन्य गति बंधेगी। मिथ्या दृष्टि गुणस्थानों में चारों ही ऑप्शन है, इसलिए उसको सांतर कहेंगे। अब उसका निरंतर बंधने का कारण भी बता रहे हैं। इसका कारण यह है कि असंख्यात वर्षायुष्क, सुनना बराबर, मैं प्रश्न पूछूंगी, असंख्यात वर्षायुष्क तिर्यंच और मनुष्यों में ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि है तिर्यंच हो या मनुष्य, कंडीशन क्या, असंख्यात वर्षायुष्क वाले कहाँ पे पाए जाते हैं, हाँ भोग भूमि में, इनका निरंतर बंध पाया जाता है, यानी भोग भूमि वाले जीव एकमात्र देवगति को ही बांधते हैं, भले वो मिथ्या दृष्टि हो, सासाधन हो या ऊपर के गुणस्थानों में। सम्यक मिथ्या दृष्टि भी गति तो बांधेगी, आयु भले नहीं बांधेंगे, क्योंकि वहां से मरकर जीव देव ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि सासाधन वाले भवनत्रिक में जाते हैं और सम्यक दृष्टि मरकर सौधर्म ईशान में, ऊपर नहीं हो, क्योंकि संयम का अभाव है वहां, तो सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान में और मिथ्या दृष्टि सासाधन वाले भवनत्रिक में, ये नियम है। इसका अर्थ भोग भूमि वाले अन्य गति को बांधेंगे ही नहीं, एकमात्र देवगति को ही बांधेंगे, उनकी अपेक्षा से वहां के जीवों को देवगति का निरंतर बंध कहेंगे। ये कुभोग भूमिया भी वो मरकर देव में ही जाते हो, वहां भी कोई जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, वो भी सौधर्म ईशान में जाएंगे और वहां के मिथ्या दृष्टि जो जीव है वे भवनत्रिक में जाएंगे। कल वो कुभोग भूमिया का चार्ट चल रहा था अपना। लवण समुद्र में ऐसे 48 द्वीप है और कालोदक समुद्र में भी 48 द्वीप है, उन द्वीपों में ये कुमानुष्य रहते हैं, जिसको कुभोग भूमि कहने में आता है, उन मनुष्यों को कुमानुष कहते हैं। तिर्यंच हो गए वहां पर, वो तो उनको कुतिर्यंच, हाँ इनको अंतर द्वीपज म्लेच्छ ऐसा भी कहते हैं, द्वीपों में रहते ना ये 48 और 48 96 द्वीपों में रहते हैं, उनका दूसरा नाम है अंतर द्वीपज म्लेच्छ। तो यहाँ वो अभी वहां कैसी कैसी कंडीशन होते हैं, कैसे पूंछ वाले कान वाले होते हैं, वो तो अभी बात आगे देखेंगे देवलाली शिविर में ये हाँ मनुष्य गति है वो, और वो भोग भूमि है, परंतु कुभोग भूमि कहते हैं। हाँ वो एक मनुष्य भव है और वहां सम्यक तो भी प्राप्त कर सकते हैं, हाँ तो फिर गया नहीं कहते हैं। ये अपात्र कुपात्र दान के प्रभाव में वहां जी जाता है। चलो तो हाँ वो भी बताना पड़ेगा। दान देते हैं तो कौन से द्रव्य का दान देना चाहिए, किसको देना है, पात्र क्या है, देने वाला क्या है, ये सब चार चार बातें आती है उसमें सब में। जैसे हिंसा में भी, हिंसा क्या है, किसकी हिंसा होती है, हिंसक कौन है, कौन करने वाला कौन है, और वो हिंसा वगैरह ऐसे उसमें भी भेद पड़ते हैं। वैसे दान में भी देने वाला यानी दातार के लक्षण, पात्र यानी लेने वाले के लक्षण, और कौन सा द्रव्य दे रहे हैं वो भी, कौन से देना चाहिए नहीं देना चाहिए नहीं, वो भी कौन से योग्य अयोग्य, उसकी भी चर्चा आती है शास्त्र में, ये सब बातें बताती है।
मंदिर तो हो गया।
हाँ मंदिर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ, नहीं जिनालय वगैरह कुछ नहीं। अभी ऐसे ना वहाँ कोई पूर्व के संस्कार से कोई वहाँ प्राप्त करेगा या कोई चारण रिद्धिदारी जावे तो भी पता नहीं सक्या वहाँ के सम्यक्त के कारण। जैसे तीरंज भी प्राप्त कर सकते वैसे ये भी प्राप्त करेंगे इसी बात में। देखो इससे ऊपर यानी कहाँ की बात चल रही है, पहले तो मिथ्या दृष्टि और साधन दोनों की बात की, और उसमें सांतर निरंतर कैसे, अन्य को तो सांतर है, मनुष्य तीरंजों में जो बंध होता है चारों गति में से कोई गति ऑप्शनल है, परंतु भोग भूमि वाले जो मनुष्य तीरंज है वो एकमात्र देवगति को ही बांधते हैं, उनकी अपेक्षा निरंतर है। उसके ऊपर यानी ऊपर के गुणस्थानों में, ऊपर के गुणस्थान यानी तीसरे से लेकर आठवें तक, इससे ऊपर निरंतर ही बंद है, क्योंकि एक समय से बंद का नाश नहीं होता, यानी एक समय मात्र भी वो बंद नहीं रुकता है, इसलिए उसको निरंतर कहा। क्योंकि गति नाम का तो हर समय बंद रही है ना, पहले ऑप्शनल थी परंतु अभी ऑप्शन कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि बांधने वाले एकमात्र मनुष्य तीरियंच ही है। तीसरे गुणस्थान से ऊपर देवगति को बांधने वाले तीरियंच है या मनुष्य है, तो पांचवे तक तो तीरियंच बांधेंगे तो देवगति को ही बांधेंगे, और मनुष्य वो तो आठवें तक तो देवगति को ही बांधेंगे। अब अन्य प्रकृतियों की बात करते हैं। समचतुरस्र संस्थान, इस स के ऊपर बिंदी लगाना, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय, वो द के ऊपर भी करना बराबर, आदेय प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टियों में सांतर निरंतर है। अब देखिए ये समचतुरस्र संस्थान, तो अभी हम सांतर किसको होता है उसको देखेंगे, मिथ्या दृष्टि और सासादन वाले पहले दूसरे गुणस्थान वाले सांतर क्यों है, क्योंकि ये प्रतिपक्षी प्रकृति है। छह संस्थानों में से कोई संस्थान बनता है मिथ्या दृष्टि को, यानी वहां एक की विच्छित्ति हो जाती है, और दूसरे गुणस्थान में चार की विच्छित्ति होती है परंतु पांच में से कोई बंधेगा, इसलिए वहां सांतर कहा, क्योंकि प्रतिपक्षी प्रकृति है। फिर भी निरंतर किस अपेक्षा से है उसको अभी बताते हैं। अभी अभी हमने देखे थे भोग भूमि वाले देवगति को ही बांधते हैं, तो देवगति के साथ कौन सा संस्थान बनता है, तो समचतुरस्र संस्थान ही उनके होता है, तो उनके लिए ये निरंतर बंदी होगी, वो अन्य संस्थानों का बंध ही नहीं करेंगे। लिखा ना, क्योंकि भोग भूमि जो में उनका निरंतर बंध पाया जाता है। देखिए, और हम सोचते कि हम सोचकर कुछ कर्म बांध सकते हैं, परिणाम कर सकते हैं, अभी भोग भूमि वालों को ऐसे ही परिणाम होंगे जिसके कारण वो देवगति को ही बांध रहे, अन्य गति को बांध ही नहीं रहा है रहे, और उनके उसको उसके साथ बंधने वाली वही प्रकृतियां बंधेगी जो शुभ प्रकृतियां होती हैं, जैसे यश कीर्ति बंधेगी और जो कुछ है उसके देवगति के साथ बंधने वाले, ऊपर निरंतर ही बंध है, ऊपर यानी तीसरे चौथे गुणस्थान वगैरह में निरंतर इसी का बंध होता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। अभी प्रतिपक्ष कौन सी है, संस्थान के लिए अन्य संस्थान, पहले गुणस्थान में छठे नंबर के संस्थान यानी कौन सा, मुंडक संस्थान के बंद की विच्छित्ति हुई और दूसरे गुणस्थान में नगरोत परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन ये बीच वाले चार की विच्छित्ति हुई। तो समय चतुर्थ संस्थान बनता रहेगा तीसरे गुणस्थान से, तो आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक निरंतर उसी का बंद होगा। वैसे प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति का बंधक कहाँ तक है, कहाँ विच्छित्ति है दूसरे में, उसके ऊपर एकमात्र प्रशस्त विहाय गति का ही बंध होगा। सुभग के उल्टा दुर्भग, सुस्वर के उल्टा दुस्वर और आदेय के उल्टा अनादेय, इनके बंध की विच्छित्ति दूसरे में होती है। तो आगे तो ये शुभ प्रकृतियाँ ही बंधेगी, इसलिए कहा ऊपर निरंतर ही बंध है, क्योंकि वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। अब ये 69 पेज पर आए हम, 69। पंचेंद्रिय जाति त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सांतर निरंतर बंध है। अभी सांतर क्यों है हम देखते हैं। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले को पांच जाति में से कोई एक जाति बंधेगी, तो पंचेंद्रिय जाति का सांतर कहाँ है, प्रतिपक्ष है वहां पर। वैसे त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या प्रत्येक साधारण, वहां तो ऑप्शन है मिथ्या दृष्टि वाले को। परंतु मिथ्या तो गुणस्थान में इनमें से कौन कौन से बंध की विच्छित्ति होती है, ये एकेंद्रिय आदि जाति के बंध की विच्छित्ति होती है, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरेंद्रिय जाति के बंध की विच्छित्ति होती है। फिर स्थावर उसी के साथ आ गया, एकेंद्रिय गया तो स्थावर भी गया। सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, इनके बंध की विच्छित्ति पहले वाले को ही होती है मिथ्यात्व में, तो ऊपर इनका बंध ही नहीं है, तो ऊपर उनके प्रतिपक्षी नहीं रहे, तो ऊपर के गुणस्थानों में कहेंगे इनका निरंतर बंध है। अब यहां कहते हैं पहले गुणस्थान में भी निरंतर किसी अपेक्षा से बताया है, ख्याल आता है। पहले गुणस्थान वाले यानी मिथ्या दृष्टि भी ऐसे कौन जीव है कि जिनको निरंतर पंचेंद्रिय जाति त्रस बादर पर्याप्त का, हाँ देव में कौन से बहुनत्रिका और सौदर मिशान को छोड़कर, क्योंकि वहां वो एकेंद्रिय का बंध कर सकते हैं। इसलिए क्या इसका कारण यह है कि सनत कुमार आदि देवों आदि में ऊपर के सभी नारकियों, क्योंकि नारकी तो पंचेंद्रिय जाति के अलावा अन्य किसी का बंध करते ही नहीं, तो पंचेंद्रियों में भी वो अपर्याप्त वगैरह का तो बंध करते ही नहीं है, पर्याप्तों का ही करते हैं। ये अपर्याप्त नाम कर्म है, सूक्ष्म साधारण, ये देवों को और नारकियों के बनता ही नहीं। देवों को तो एकेंद्रिय का हो सकता है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों का तो हो सकता है, वह तो ऊपर तो वह भी नहीं होगा। भवनत्रिक और सौधर्म ईशान बांध सकते हैं, हाँ हाँ, बाकी ऊपर नहीं बांधेंगे। ऊपर भी हमने देखा ना, शतार सहस्रार तक तिर्यंच गति बांध सकते, ऊपर तो मनुष्य गति ही बांधेंगे। यहाँ तो उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ तो पंचेंद्रिय जाति त्रस बादर पर्याप्त की बात चल रही और प्रत्येक शरीर। तो सनत कुमार आदि देवों में उसका निरंतर बंध है, बराबर ऊपर के सभी में, भले तिर्यंच में भी जावे तो भी पंचेंद्रिय में जाएंगे, देव भी हो। नारकियों में भी, नारकी मरकर तो पंचेंद्रिय में आते हैं, तो उनके पंचेंद्रिय जाति बादर त्रस पर्याप्त प्रत्येक शरीर का ही बंध होता है निरंतर हर समय। और भोग भूमि जो में भी, क्योंकि वो भी देवगति का बंध करते हैं, तो देवगति के साथ पंचेंद्रिय जाति ही बंधेगी, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक ही बंधेंगे, उनका निरंतर बंध पाया जाता है। सासादन आदि उपरिम गुणस्थानों में इनका निरंतर बंध है, क्योंकि वो अभी वहाँ प्रतिपक्षी कुछ रहा नहीं ना, उनके प्रतिपक्ष वालों की बंध की विच्छित्ति हो गई पहले में, तो दूसरे गुणस्थान के ऊपर इन्हीं का बंध होगा, इनके प्रतिपक्षियों का बंध होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। अब परघात और उच्छ्वास का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सांतर निरंतर बंध है, क्योंकि देव नारकी और भोगभूमिजों में निरंतर बंध पाया जाता है। देखो ये उच्छ्वास का बंध तो जो जो जीव पर्याप्त नाम कर्म बांधते हैं उसके साथ उच्छ्वास नाम कर्म बांधेंगे ही, और पर्याप्त है वो प्रघात नाम कर्म भी बांधेंगे, क्योंकि उसका उदय तो होने ही वाला है। परंतु जो अपर्याप्त है, सूक्ष्म साधारण वगैरह, वो जो बांध रहे हैं, उसके साथ इनका बंध ऑप्शनल है। इसलिए वहाँ सांतर निरंतर बंधेगा या नहीं भी बंधेगा, इसको प्रतिपक्षी ऐसा बात नहीं है। है तो आप अप्रतिपक्षी, उपघात परघात में प्रतिपक्ष नहीं है, वो सिंगल अलग अलग प्रकृतियां हैं। तो परघात बंधेगी तो बंधेगी, और कोई जीव अपर्याप्त या साधारण अपर्याप्त ऐसे ऐसी पर्याय बांध रहा है, तो उसके साथ परघात का उच्छ्वास का बंध ही नहीं होगा। तो या तो बंध होगा या नहीं होगा, इस अपेक्षा से सांतर कहा। अब उनके बंध की विच्छित्ति हो जाएगी, एकेंद्रीय है, अपर्याप्त है, साधारण है, तो दूसरे गुणस्थान के ऊपर तो इनका बंध होता ही रहेगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान के ऊपर जीव पर्याप्त नाम कर्म को ही बांधते हैं। तो उसके साथ ये परघात भी बंधेगी और उच्छ्वास नाम कर्म भी बंधेगा। यानी ये ऑप्शनल बहुत सारी प्रकृतियां तो मिथ्या दृष्टि को ही बनती है। हाँ हाँ, फुल रेंज है, हाँ, चॉइस इज यूर्स ऐसा कहते हैं। हाँ, देखो यहाँ लिखा ना, परघात और उच्छ्वास का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सांतर निरंतर बंध है, क्योंकि देव नारकी और भोगभूमिजों में निरंतर बंध पाया जाता है। अभी देखिए ना, जो देव है मिथ्या दृष्टि, वो परघात को भी बांध रहे और उच्छ्वास को, क्यों? क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म बांधते हैं वे, बादर पर्याप्त ऐसे नाम कर्म बांधते हैं। अभी जो नारकी है, वे भी पंचेंद्रियों में ही, और वे भी पर्याप्तों में जन्मेंगे, अपर्याप्त पंचेंद्रिय भी नहीं होगी, इसलिए उनके भी उच्छ्वास और परघात ये प्रकृतियां बंधेगी उसके साथ। अब ऊपर के गुणस्थानों की बात हो रही है, सासाधन आदि ऊपरी गुणस्थानों में इनका निरंतर बंध है, क्योंकि प्रतिपक्षी और सबका बंध की विच्छित्ति हो जाती है, क्योंकि वहाँ अपर्याप्त के बंध का अभाव है। अपर्याप्त नाम कर्म पहले गुणस्थान वाले में ही ऑप्शनली बनता है, सबको बंधे ऐसी बात नहीं, जो जैसे परिणाम करेगा, या तो अपर्याप्त नाम कर्म बांधेगा या पर्याप्त। अब स्थिर और शुभ प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त तक सांतर है। देखो क्या कहते हैं, ये प्रतिपक्षी वाले प्रकृति में हमने गिनाए थे। अभी जो परघात उच्छ्वास देखा था ना, वो प्रतिपक्षी नहीं है, अप्रतिपक्षी भी है, परंतु बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। यानी परघात और उच्छ्वास तो पर्याप्त नाम कर्म के साथ तो बंधेगी ही। अब यहां कौन सी बात है, स्थिर और शुभ की, तो इसके प्रतिपक्षी कौन है, बात है अस्थिर और अशुभ। तो अस्थिर और अशुभ के बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है, छठे में, छठे गुणस्थान में। हाँ, प्रमत्ता लिखा ना अभी, तो वहां तक प्रतिपक्ष है। हाँ, तो वहां या तो स्थिर और शुभ बंधेगी या अस्थिर और अशुभ बंधेगी, तो वहां सांतर है। ये स्वोदय की बात नहीं चल रही है यहाँ, वो उदय वाली बात बाद में करेंगे हम। तो ये सांतर है कि निरंतर है, देखिए, देखो प्रमत्त तक सांतर है, ऊपर निरंतर है, यानी छठे तक तो सांतर है। अभी रहा कितना, सातवां गुणस्थान और आठवें के छठे भाग तक, तो इन्हीं का बंध होगा, स्थिर का और शुभ का निरंतर बंध, हर समय बंध रही है। ऊपर निरंतर है क्योंकि वह प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध से रहित है। एक बार ये ख्याल में आएगा, ये बंध की विच्छित्ति नहीं होती है, और तब तक यदि वो प्रतिपक्ष वाली प्रकृति हो तो वो सांतर होगी। अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगा ना मेरे भी। क्योंकि वो क्यों ऐसा कहते हैं, ये इस पोजीशन पर या इस निर्णय पर क्यों पहुंचना है, ये बात ख्याल में लेनी, भले वो याद रहे उसकी बात नहीं है, रहे तो रहे नहीं तो नहीं। अब प्रत्ययों की बात करेंगे। प्रत्यय कितने हैं हमने देखा था, प्रत्यय गुणस्थान में कितने, तो मूल प्रत्यय टोटल चार है, तो मिथ्या तो गुणस्थान में चार होते हैं मूल प्रत्यय। उत्तर प्रत्यय कितने होते हैं, 55 हाँ, और उसमें भी एक समय वाली बात करेंगे तो जघन्य 8 और उत्कृष्ट 10, सॉरी जघन्य 10 और उत्कृष्ट 18, मैं किसकी बात दूसरे को सोच रही थी, हाँ 10 और 18। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम देवगति, हर एक प्रकृति के बारे में बताएंगे। देवगति, देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी और वैक्रिक द्विक के प्रत्यय मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थानों में क्रम से 51 और 46 है। किसको बांधने वाले, हाँ देवगति बांधने वाले। अब देवगति कौन जीव नहीं बांधेंगे, हाँ स्वयं देव नहीं बांधेंगे बरोबर, नारकी भी नहीं बांधेंगे, और विग्रह गति में बांधेंगे कि नहीं देवगति, मिथ्या तो गुणस्थान में, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि बांधेगा, हाँ मिथ्या दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंध नहीं करेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखा देखो, ये हम हमेशा 55 गिनते हैं प्रत्यय, मिथ्या तो गुणस्थान में हम 55 प्रत्यय गिनते हैं, उसके बदले देव संबंधी जो चार प्रकृतियां हैं, देवगति, देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी, वैक्रेक और वैक्रेकंगोपा, ये साथ भी बनती है ना, तो उसमें कहा उन्होंने 51 ही प्रत्यय होते हैं, तो ये 51 प्रत्यय कौन से है, 5 तो मिथ्यात्व को लेना है क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, 12 अविरति को लेना है, 25 कषायों को लेना है। अब रही बात योग की, तो योग में कितने हो गए, तो या कितने नहीं हो गए, तो कहते यहाँ औदारिक मिश्र, कारमाण और वैक्रेक द्विक, यानी वैक्रेक और वैक्रेक मिश्र, योग की बात है ना, ये नहीं हो गए तो योग में से इनको घटाना, औदारिक मिश्र का योग, कारमाण का योग, वैक्रेक का योग और वैक्रेक मिश्र का योग, इन्हें देवगति का बंध, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है तो देव संबंधी ये चार प्रकृतियां उन्हें उनका बंध नहीं होता, वो उनको तो देव में तो सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता है, तो ये इनको निकाल देंगे हम, तो हमने जो 55 प्रत्यय गिने थे मिथ्या दृष्टि के उसमें से ये चार गए तो 51 रह गए। अब बात सासाधन वाले की, हाँ अभी सासाधन के प्रत्यय कितने, 46 है, उसको हम अलग से गिनेंगे, पहले हमने सासाधन वाले को कितने देखे थे सामान्य 50, अब 50 में से ये चार निकल गए तो 46 हो गए, हम अलग अलग हिसाब करके देखेंगे ना, हाँ। अभी तीसरी लाइन में सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 42 प्रत्यय है, अभी सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सामान्य से हम कितने देखते थे, 46 के 43 देखते थे ना, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में हमने मिश्र वाले को और कारमाण को लिया ही नहीं था, फिर भी वैक्रिक का योग को पकड़कर सामान्य में जब हम बात करते हैं तीसरे गुणस्थान के प्रत्ययों के, तो उसमें तो वैक्रिक का योग वाले को होते हैं, तो वहां हम जनरली यानी इसकी यहाँ की बात छोड़ दीजिए, तो सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान में 46 प्रत्यय होते हैं, 43 में चौथे गुणस्थान की बात करें 43 होते हैं, उसमें से वैक्रिक कायोग को हटाना तो 42 हो जाएंगे। वैक्रिक कायोग को क्यों हटाना, क्योंकि देवगति बांधने वाले की बात चल रही है, क्या लाया, हाँ देखो तो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 42 प्रत्यय है, क्योंकि वहां वैक्रिक व का वही करना, वैक्रिक कायोग का अभाव है। असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान में हमेशा हम कितने देखते आए, 46, क्योंकि तीसरे वाले को जो 43 देखे उसमें औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण कायोग मिला देते हैं, क्योंकि असंयत के साथ जन्मने वाला है ना उसके ये योग पाए जाते हैं, परंतु अभी ये कौन से जीव लिया, हाँ तो उसमें अभी कितनों लेना। तो असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में 44 प्रत्यय है, हमेशा हम 40 देखते थे क्योंकि वहां वैक्रेक द्विक का अभाव है। चौथे गुणस्थान में ने मनुष्य से मरकर देव में जाने वाले अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिक मिश्र होगा, बाद में वैक्रिक है परंतु ये देवगति बांधता नहीं ना वो, इसलिए उसको नहीं लेना है इसमें से। और अवतारिक मिश्र वाले को देवगति बंधेगी कि नहीं बंधेगी, हाँ मयंक भाई बंधेगी, क्योंकि अभी अवतारिक मिश्र कौन सा लिया है, चौथे गुणस्थान वाला लिया है। मिथ्या तो गुणस्थान वाला अवतारिक मिश्र देवगति नहीं बांधता, परंतु यह सम्यक दृष्टि है औदारिक मिश्र। अभी तीर्थंकर का जीव आएगा माँ के पेट में, हाँ तीर्थंकर की बात छोड़ो, सामान्य कोई सम्यक दृष्टि आता है अन्य गति से मरकर अभी यहाँ आया है, मनुष्य में आया, देव या नारकी मरकर यहाँ आ गया, तो देवगति का बंधन चल रहा है उसका मिश्र अवस्था में हो। वो तो मिश्र की बात क्या, विग्रह गति में भी बांधेगा। गति तो बनती रहती है हर समय। देखो शेष प्रकृतियों के प्रत्यय सर्व गुणस्थानों में ओग से स्वीकार किए गए प्रत्ययों के समान है। ओग का अर्थ याद है पीना, हाँ गुणस्थान, बहुत अच्छा, आप कभी कभी आते तो भी सब कुछ जानते हैं, अच्छा है। यानी जो हमने प्रत्येक गुणस्थान के कितने प्रत्यय होते हैं ये जो हमने देखा है, अन्य प्रकृतियों के बारे में वही एप्लीकेबल है, वही प्रत्यय हो गए। यहाँ देवगति के संबंध में कुछ फर्क था वो उन्होंने बता दिया, क्योंकि विशेष कारणों का अभाव है, और यदि है तो विचार कर कहना चाहिए। हाँ यानी है तो यानी विशिष्ट कोई गति पर्याय संबंधी कोई फर्क है तो जानकर कहना चाहिए, ऐसा कहते। अब आगे बढ़ेंगे, अभी कौन से गति संयुक्त की बात चल रही है उसको बनेंगे। जैसे वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग कौन से गति संयुक्त बांधेगा, या देवगति देवगति प्राज्ञानुप्रयोग वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग, ये तो देवगति के संयुक्त ही चल रहा है ना, उस गति को हम कह रहे हैं और कहते हैं कौन से गति संयुक्त बांध रहा है। तो देवगति और देवगति प्राज्ञानुपूर्वी को सब गुणस्थानों के जीव देवगति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि अन्य गतियों के साथ उनके बंध का विरोध है। देवगति को बांध रहे तो उसके साथ अन्य गति बंध ही नहीं रहे, उसके साथ की बात है, उसी समय की बात है। वैक्रेक शरीर और वैक्रेक अंगोपांग को मिथ्यादृष्टि जीव देवगति व नरोगति के संयुक्त बांधते हैं। मिथ्यादृष्टि जीवों में ऑप्शन है ना, तो वहां देवगति जो बांधते वो तो वैक्रेक को बांधेंगे ही बांधेंगे, परंतु मिथ्यादृष्टि जीव जो नरोगति को बांध रहे हैं उसके साथ भी वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग का बंध करेंगे। उपरिम गुणस्थानों में देवगति से संयुक्त बांधते हैं, ये वैक्रिक की बात अलग उठाई इसलिए, हाँ अकेले वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग का अगर हमको विचार करना है कहाँ तक बनते, तो आठवें तक, कहाँ से बनती है तो पहले गुणस्थान से, तो पहले गुणस्थान में वैक्रिक द्विक बंधेगी, वो देवगति के संयुक्त भी बन सकती है और नरगति के संयुक्त भी बन सकती है। अब पहले गुणस्थान में तो नरगति के बंध की विच्छित्ति होती है, तो दूसरे गुणस्थान से आगे जो बनती है तो देवगति संयुक्त ही बनते हैं, लिखा ना शेष गुणस्थान। हाँ निगोद जीव मरकर मनुष्य में आ सकते हैं, यानी वो मनुष्यायु मनुष्य गति इतने ही क्या वज्र देव में नहीं जा सकते, ना ही देव में जाएंगे ना ही नारकियों में। एकेंद्रिय निगोद की बात छोड़ो, कोई भी एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय जीव देवगति नरगति देवायु नरकायु आदि बांध ही नहीं सकते। असंगी में देवों में जाएंगे तो भवनत्रिक में जा सकते, नरक में जाएंगे तो पहले नरक में जा सकते हैं, परंतु वहां से मरकर कोई असंगी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता, वो संगी पंचेंद्रिय ही होगा, या होगा तो देव कोई एकेंद्रिय में जा सकता है, परंतु विकलेंद्रिय में भी नहीं जाएगा, असंगी में भी नहीं जाएगा। ऐसे अलग अलग रूल्स है। देखा अभी ये देवगति के ऊपर के गुणस्थान यानी दूसरे गुण, तेजो कायिक और वायु कायिक जो है वो मनुष्य की आयु नहीं बांध सकते, ना ही मनुष्य गति का बंद करते। उल्टा हम देखते हैं ना, कोई मिथ्या दृष्टि जो चारों गति का ही बंद कर सकते हैं। अभी उसने गति बांधी है, मनुष्य गति उसकी सत्ता में पड़ी है। अब ऐसा जो वायु कायिक अग्नि कायिक में जन्म लिया, तो वहां जन्म लेने के बाद वो मनुष्य गति है वो संक्रमित होकर अन्य गति रूप हो, तिर्यंज गति रूप हो जाती है, ते उसकी उद्वेलना होती है कहते हैं। और उनको मनुष्य गति का बंध तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हम ऐसे लौकिक में भी कहते हैं ना, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है ना, जलते हैं ना वो तो अग्नि कायिकों के समान हो गए अपने वायु शीतल है चंचल है आप ये मिथ्यात्व संबंधी उद्वेलना चल आपके, आप जो सोच रहे हैं उद्वेलना की बात, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होकर वो मिथ्यात्व रूप होती है, उसकी बात आप पूछ रहे हैं ना, ये उन प्रकृतियों की बात नहीं चल रही है। अभी जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है वो मनुष्य गति बांध सकता है कि नहीं बांध सकता? हाँ बांध सकता है। तो ऐसा जो अग्नि कायिक वायु कायिक में जाएगा तो वहां वो मनुष्य गति के जो बंधे पड़े हैं परमाणु अंदर सत्ता में पड़े पड़े वो अन्य गति रूप तिर्यंज गति रूप हो जाएंगे, उसको कहते हैं उद्वेलना। वहां से बाहर आने के बाद फिर दोबारा बांध सकते, पर वो गति का फिर उद्वेलना हुए वो फिर संक्रमित नहीं होगी, उल्टा संक्रमण नहीं होगा, नया बंध करेगा, मनुष्य गति को बांधेगा अन्य पर्याय में जाकर, तब वो सत्ता में आ सकते हैं। हाँ सत्ता में ही गड़बड़ी होती, उद्वेलना का अर्थ सत्ता में से चेंज हो जाना पूर्ण रूप से। उसी के लिए कि अग्नि में से कोई, अग्नि वायु में से कोई मनुष्य में जन्म ले ही नहीं सकता, निगोद में से ले सकता है। हमने निगोद को ही अत्यंत ही समझा ना, कि कितने ही मानते हैं निगोद में से कोई मनुष्य में नहीं आ सकता, अरे निगोद से आकर मोक्ष भी जा सकता है, सूक्ष्म निगोद से आकर मुनि तक ही जा सकता है, यानी सातवें गुणस्थान तक जा सकता है, मोक्ष उस पर्याय में नहीं जाएगा, सूक्ष्म निगोद में से निकलता। परंतु बादर निगोद में से आकर मनुष्य होकर उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। कंडीशन क्या है कि 63 शलाका पुरुष में से कोई पद उसके नहीं होगा। देखो वो तीर्थंकर नहीं हो सकता, चक्रवर्ती नहीं हो सकता, बलभद्र नारायण प्रति नारायण आदि वो नहीं होगा। वो जीव निगोद से निकला हुआ जीव उस पर्याय, इमीडिएट नेक्स्ट पर्याय की बात है, बाकी सभी जीव कभी ना कभी निगोद से ही निकले हैं उसकी बात। हाँ ये जो लिस्ट बताए हैं वो सम्यक दृष्टि को ये प्राप्त होते हैं। हाँ आपने, आपका प्रश्न है उद्वेलना वाली हमने जो प्रकृतियां देखी थी कुछ 11 कुछ देखी थी ना, तो उसमें तो हमने नरक गति का भी नाम सुना था, देवगति का भी सुना था, वैकृत वैकृत अंगोपांग का भी सुना था, क्योंकि ऐसे ना मिथ्यात्व गुण ये कोई जो आता है वो नरक गति की भी उद्वेलना हो सकती है। एकेंद्रियादि में बहुत लंबा काल चला वो, तो उसके नरक गति की देवगति की वैकृत वैकृत उसकी सबकी उद्वेलना होती जाती है। मनुष्य गति की उद्वेलना तो लास्ट नंबर उसको था, उसके पहले देवगति का और नरक गति की उद्वेलना हो जाती है। मिथ्यात्व अवस्था में एकेंद्रियादि पर्याय में बहुत लंबे काल तक चलता है जीव, तो उन गतियों की उद्वेलना हो जाती है, क्योंकि उसके संकलेश परिणाम होते रहते हैं, तो बंधी हुई सत्ता में पड़ी हुई देवगति भी संक्रमित हो जाती है, ऐसा लेना उसका अर्थ। उद्वेलन ने उल्टा संक्रमण होकर अन्य और अप्रशस्त प्रकृतियों में उसका उल्टा संक्रमण हो जाता है।
ये अभी आपको जो बताया कि बादर निगोदिया जी वहां से निकलकर मनुष्य पर्याय में आकर मोक्ष लेगा, तो उसमें उन्होंने बताया कि 63 साल का पुरुष नहीं होंगे, इनमें से कोई भी पद नहीं होगा उसके। तो ये 63 साल का पुरुष क्या है जानते हैं आप? तू जाने देखो, 24 तीर्थंकर गिनना आप, 12 चक्रवर्ती, 36 हो गए, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये 27। ये 63 जो है वो पद उन्हें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
और उसमें बहुत सारे नियम है, जैसे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तो हो सकता है, जैसे तीसरे नरक, परंतु वो चक्रवर्ती नहीं होता है, नारायण प्रतिनारायण कुछ कोई नहीं हो सकता, तीर्थंकर होने में कोई बाधा नहीं उसके।
अभी बात ही निकली है तो और एक बात बता देता हूँ। देखो, बलभद्र और नारायण ये हमेशा एक बाप के दो माँ के अलग अलग बेटे हैं। हाँ, मतलब वो सौतेले भाई ही होते हैं,
जैसे राम और लक्ष्मण
हमेशा, और वो दोनों का इतना प्रेम रहता है कि हमेशा वो एक मर जावे, मतलब जो
नारायण
मर जावे तो बलभद्र उसको उठा उठा के 6 महीना रखता ही है हर एक में।
ये इतनी उनके उनके प्रति तीव्र
मोह है, मोह हाँ। है। ये बहुत सारी ऐसी मजा मजा की बातें हैं। हाँ। हमेशा नारायण प्रति नारायण को मारेगा ही मारेगा, मतलब उसका क्या कहते हैं, वध करेगा।
वो अर्धचक्री है ना, जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों का है राजा, तो प्रति नारायण अर्धचक्री है और उसका वध करके नारायण अर्धचक्री बन जाता है,
और दोनों ही नरक जाएंगे।
नरक जाएंगे दोनों ही। हाँ, दोनों
नारायण और प्रति नारायण।
अभी रावण भी गए और लक्ष्मण भी गए नरक में।
और बलभद्र जो होते हैं उसमें से कई मोक्ष जाएंगे और कई देवगति में जाएंगे।
देखो, रामायण पढ़कर हम यहाँ राग द्वेष करते हैं, सीता के प्रति कितना राग और रावण के प्रति द्वेष, और वो सीता का जो वहाँ जाकर उसको उपदेश दे रहे हैं रावण को, और उनकी कहानियां सुन सुन कर यहाँ हम राग द्वेष करते हैं। ये तो प्रथमानुयोग तो संसार की विचित्रता जानने के लिए होते हैं, कैसे कैसे जीवों पर क्या क्या प्रसंग बनते हैं और कैसे पाप पुण्य के खेल, अगर हम देख खेल उसके उदय के फल अलग अलग, कैसा जो कहाँ अभी राज भोग रहा है और थोड़े ही अंतर्मुहूर्त में कहो या 5 मिनट में ऐसा प्रसंग आता है, राजबाट सब छूट गया उसका और कहीं जाके स्मशान में जाता है। वो सत्येंद्र इसकी है ना, जीवनधर की कहानी, उसकी माँ तो वो तो रानी है, गर्भवती है, और ऐसा वो सेनापति राजा पर आक्रमण कर, राजा भी मर जाता है और उसको ऐसा कुछ यंत्र में बिठा कर छोड़ देता है, वो स्मशान में जाकर उसका वहाँ रुकते हैं और वहाँ उसकी प्रसूति होती है, वहाँ बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को पाल भी नहीं सकते, वहीं छोड़कर चली जाती, कोई सेठी दूसरा आकर जिसके बच्चे मरते रहते हैं वो स्मशान में उसको वो बालक मिल जाता है और वो उसको बड़ा करता है। ये एक कैसी है नहीं, वो कैसे कैसे जीवों पर कैसे कैसे बीतती है। हम यहाँ नहीं देखते, अभी प्रथमानुयोग की बात छोड़िए, अभी भूकंप आता है तो क्या होता है, ये कच्छ में क्या हुआ, बड़े बड़े करोड़पति रोडपति हो जाते हैं 1 सेकंड में। ये पिनांग की मम्मी ने कहा था उनके बिल्डिंग में आग लगे थे, जैसे है जैसे बदन पर जितने कपड़े उतने से ही बाहर निकले, और वो भी कहते हम बाजू में वो पेट्रोल पंप के वहाँ जाके बैठे और सब ऐसा ही विचार कर रहे थे कि देखो कैसी परिस्थिति आ गई, बस ये जितने कपड़े उतने मात्र से अभी हम रहे, घर अभी बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। देखो अभी यहाँ क्या हम पढ़ रहे थे, आप कुछ बोलेंगे?
इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि कल का वादा मत कर, जो कुछ तू आज अभी कर रहा है, आज भी नहीं अभी कर रहा है, सो कर। हम तो सोचेंगे नहीं, हम जरा बूढ़े हो जाएंगे, जरा आगे जाके और थोड़ा इतना काम निपटा लूंगा, बाद में करूंगा। कोई गारंटी नहीं है, किस बात की भी गारंटी नहीं है।
इसीलिए आज का जीव क्या सोचता है, जो कहे भोगना है वो आज भोग, कल का ठिकाना नहीं। आजकल टेंडेंसी ऐसी देखने में आती। हाँ, भले कर्जा भी ले ले मगर अभी भोग ले सारा। नहीं नहीं समझा। आज की सृष्टि में कल किसने देखा है? काल का अपना अपना दोष काल पर डालते। देखो अभी दूसरी लाइन 70 पृष्ठ पर हम दूसरी लाइन में आ गए। ये देवगति के संयुक्त वाली बात हमने देखी, व्यतिरेक शरीर अंगोपांग की बात। अब पंचेंद्रिय जाति, कॉमा लगाना यहाँ, तेजस व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, यहाँ भी कॉमा, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर और निर्माण नाम कर्मों को मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त। ये गति संयुक्त वाली बात चल रही ना अभी यहाँ। सासाधन सम्यक दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त, क्योंकि वो बांधता ही तीन गति है, इसलिए तीन गतियों से संयुक्त। सम्यक मिथ्या दृष्टि व असंयत सम्यक दृष्टि दो गतियों से संयुक्त तथा उपरिम जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं। ये तो आसान है ना, ये कौन से जीव कौन सी गति बांधते हैं उसके साथ इनका बंध होता है, क्योंकि ऊपर ये सारे निरंतर ही बनती है। पहले गुणस्थान में ऑप्शन था, फिर भी किस गति के साथ ये बनते ही है उसकी बात की उन्होंने। समचतुरस्र संस्थान प्रशस्त विहाय गति स्थिर शुभ सुभग सुस्वर और आदे नाम कर्मों को मिथ्या दृष्टि व सासाधन सम्य दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त बांधते। मिथ्या दृष्टि को भी लिया, क्योंकि ये सारे शुभ प्रकृतियां हैं, तो नरक गति के साथ इसका बंध नहीं होता। जो जीव नरक गति को बांधता है तो वो इसमें से हुंड संस्थान को बांधता है, अप्रशस्त विहाय गति को बांधता है, अस्थिर को, अशुभ को, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय को बांधता है। इसलिए ये जो यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों के लिए से न शुभ प्रकृतियों की, ये नरक गति के साथ संयुक्त नहीं बनती, क्योंकि इनके बंध के साथ उनके नरक गति के बंध का अभाव है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि उनके नरक गति और तिर्य गति के बंध का अभाव है। वो बंध की विच्छित्ति होगी ना नरक गति के पहले में और तिर्य गति के दूसरे में। उपरिम जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि उनमें शेष गतियों के बंध का अभाव है। ये विशिष्ट प्रकृतियों की बात चल रही है, समचतुरस्र संस्थान वगैरह वगैरह। अब देवगति प्रायज्ञ पूरी, उपरी मैंने कहा के बात की, उपरिम जीवे ने पांचवे से आगे तो मनुष्य तिर्यंच है पांचवे में, तो वो देवगति के संयुक्त बांधते हैं, और छठे से तो मनुष्य ही है, उनके भी देवगति ही बनती है। अब कौन से जीव बांध रहे हैं स्वामी, उसकी बात करेंगे। देवगति देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी वैकिरेक शरीर और वैकिरेक शरीर अंगोपांग नाम कर्मों के बंध के कौन स्वामी है वो बता रहे। तिर्यंच व मनुष्य गति वाले मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, वो बिंदी लगाना, संयता संयत स्वामी है, ये ख्याल में आता है बिना? इनको कौन बांधता है? देवगति को कौन बांधेगा? देव या नार की तो नहीं बांधेंगे, मनुष्य और तीरंज बांधेंगे। तो उनके गुणस्थान कौन से हैं? पहले से पांचवें तक। हाँ, तो यही बात यहाँ बताई। देखो, पहले चार नाम लिए उन्होंने, देवगति, देवगति प्राज्ञान पूर्विक, वैक्रिक, वैक्रिक अंगोपांग। उसके बंद के स्वामी कौन है? तो तीरंज और मनुष्य। गुणस्थान कौन से? एक से पाँच। ख्याल है, ये स्वामी है। स्वामी ने वो बांधने वाले बंधक है। उपरिम जीव, उपरिम ने छठे से आगे, छठे सातवें आठवें, उपरिम जीव मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि अन्यत्र प्रमत्त प्रसत्त हुआ, प्रमत्त संयतादिकों का अभाव है। अब अन्य प्रकृतियों की बात करें, पंचेंद्रिय जाति तेजस्व करना, ये यहाँ स्व करना, तेजस्व कारमान शरीर, समचतुरस्य संस्थान, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय और निर्माण नाम कर्मों के बंध के चारों गतियों वाले मिथ्या दृष्टि। अभी उसका बंध कौन कौन कर रहा है? तो चारों गतियों वाले मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि। क्योंकि चौथे गुणस्थान तक तो चारों ही गतियों का उदय पाए, तो वो स्वामी की बात चल रही ना। पहले कौन से गति के संयुक्त बनता था, अब यहाँ कौन से गति वाले बांध रहे हैं? तो चारों गति वाले। तो चारों गति वाले कहाँ तक? चार गुणस्थान तक तो चारों ही गति वाले पाए जाते हैं। पांचवें गुणस्थान में दो ही गति वाले हैं, इसलिए कहते हैं दो गतियों वाले संयता संयत तथा मनुष्य गति के प्रमत्त संयतादिक स्वामी हैं। क्योंकि छठे सातवें आठवें में तो मनुष्य ही जीव हो गए। बंधाध्वान सुगम है, बंधाध्वान कहाँ से कहाँ तक? आप कह सकते हैं पिनांग भाई, वो बंध कहाँ से कहाँ तक है? इन प्रकृतियों का, जो हमने वो 27 प्रकृति देखी ना, देवगति से लगा कर ये सारे निर्माण तक, ये अभी हम जो देख रहे हैं, अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी, जिनके सारे बंध विच्छेद कहाँ हो रही है? अश्विन भाई हमने देखा आठवें के छठे भाग तक। तो उनके बांधने वाले कौन है, कहाँ से लेकर बंध है? पहले से लेकर, पहले गुणस्थान से आठवें गुणस्थान तक। अभी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी बांधते हैं, चौथे गुणस्थान तक चारों गति वाले बांधते हैं, आठवें तक हमने देखा था। तो कहाँ से कहाँ तक? तो पहले गुणस्थान से आठवें के छठे भाग तक। हाँ, वही लिस्ट चल रही है अभी अभी हमने पढ़ा ना, उसके स्वामी कौन है? तो स्वामी के ऊपर से ही हमने जान लिया कि कौन है। वो तो उन्होंने सूत्र में ही बताया नहीं कि यहाँ से यहाँ तक, तो वो एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पर विच्छित्ति होती है वो अब बता रहे। देखो, अपूर्व करण काल के सात खंड करके, सात अगर भाग करेंगे, उनमें से छह खंड ऊपर चढ़कर, यानी छह खंड छह भाग बीत जाने पर, सातवें खंड के शेष रहने पर, जब सातवां भाग बाकी है, उस पॉइंट पर उनका बंध विच्छिन्न होता है, यानी छठे भाग के अंत तक बंध है, बाद में बंध रुक जाता है। शंका, सूत्र के अभाव में सात ही खंड किए जाते हैं, यह किस प्रकार ज्ञात होता है? ये सात खंड कहाँ से निकाले? तो उसका समाधान है, नहीं, यह आचार्य परंपरागत उपदेश से ज्ञात होता है। ये आचार्यों की परंपरा से हमने जाना है, कहते हैं। अब यहाँ बंध कितने प्रकार का होगा ये बात करते हैं, हम पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात और निर्माण नाम कर्मों का मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का बंध है। ये चार प्रकार याद है, मिथ्या दृष्टि गुण, ये प्रत्यय है। हाँ, निरंतर नहीं ले, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों ही प्रकार के बंध करने वाले पाए जाते हैं। बंधक यहाँ लिखा ना, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का बंध है। ये चारों प्रकार का बंध कौन से प्रकृतियों में होता है? तो ध्रुव बंदी में पाया जाता है। ध्रुव बंदी हमने 47 प्रकृतियां देखी थी, 19 और बाकी, ये बाकी में आ गई सारी। किस किस को लेना? तेजस कारमाण, वर्णादि चार, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण। ये ध्रुव बंदी ने निरंतर इनका बंध अनादि से चला आ रहा है। जब तक इनकी विच्छित्ति नहीं होती आठवें गुणस्थान में, तब तक हर समय इनका बंध होता है। यहाँ कोई प्रतिपक्ष है ऐसी वैसी कुछ बात नहीं है। विग्रह गति में भी इनका बंध चलता रहेगा, है ना? उसका कारण भी बताते, क्योंकि ये ध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं। उपरिम गुण स्थानों में तीन प्रकार का बंध है, क्योंकि वहां ध्रुव बंध नहीं है। दूसरे गुण स्थान के आगे जीव कौन से भव्य भव्य है, और उनका वो बंध मिटने वाला है, वो अध्रुव है अभी, उनके लिए वो ध्रुव नहीं रहा। शेष प्रकृतियां सादी व अध्रुव बंध से युक्त है। ये सादी और अध्रुव, ये प्रतिपक्ष वाली जो प्रकृतियां उनमें पाया जाता है, जैसे पंचेंद्रिय जाति है आदि आदि जो है, उनमें हम कहेंगे ये सादी है। जैसे स्थिर या अस्थिर बनती थी, प्रतिपक्षी है ना उसमें, तो उस ये सुस्वर बंदे या उस दुस्वर भी बंदेगी कभी, तो उसमें हम कहेंगे सादी है, अध्रुव है। अध्रुव है क्योंकि वो अभी आठवें गुणस्थान में बंदे की विच्छित्ति होने वाली है, क्योंकि उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध संभव है। परघात और उच्छ्वास को अपर्याप्त संयुक्त बांधने के काल में प्रतिपक्ष पक्षियों प्रकृतियों के बंध के अभाव में भी उनका बंध नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं? परघात और उच्छ्वास प्रकृतियां प्रतिपक्ष वाली नहीं है, फिर भी जब कोई जीव अपर्याप्त नाम कर्म को बांध रहा है, उतने काल में वो परघात को और उच्छ्वास नाम को नहीं बांध रहा है। क्यों नहीं बांध रहा? क्योंकि अपर्याप्तों के साथ उसका तो बनता ही नहीं, वो विरोधी प्रकृतियां हैं। हमेशा जो कुछ पूरक प्रकृतियां ही बंधेगी साथ में, अपर्याप्त वालों को ये बंधेगी ही नहीं, तो ये बंधेगी नहीं, इसलिए उसको भी सादी कहेंगे हम। यानी उसके प्रतिपक्ष है इसलिए सादी नहीं है, या बंधेगी या नहीं भी बंधेगी। मिथ्या दृष्टि अवस्था में इनका बंध किसी को होगा तो किसी का होगा भी नहीं। किसको नहीं होगा? तो जो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है उसके साथ इसका बंध नहीं होगा। इसलिए प्रतिपक्ष न होते हुए भी इसको सादी और अध्रुव कहेंगे। अब यहीं पर आठवें गुणस्थान में विचित्ति होने वाले और प्रकृतियों की बात अब उठाएंगे। आहार शरीर अंगो भंगाणामानम को बंधो को अबंधो। आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्मों का कौन बंधक और कौन अबंधक है? यह सूत्र सुगम है, प्रश्न समझ में आवे ऐसा है। उसका उत्तर देते हैं, अपमत्त संजदा अपूव करण पैठ उवसमा खवा बंधा। अपूव करण धाये संखेजे भागे गंतुन बंधो वोच्छिज्यति एदे बंधा अवशेषा अबंधा। अभी जो आठवें गुणस्थान के छठे भाग में विच्छित्ति होने वाले 27 प्रकृतियां देखी, उसी स्थान पर आहारक आहारक अंगोपांग की भी बंध की विच्छित्त तो होती है, फिर भी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सातवें से ही बनती है और आठवें तक ही बनती है, सातवें और आठवें में बंधेगी। छठे गुणस्थान में उदय होगा, बंध नहीं होगा। इसलिए उनके साथ इनकी लिस्ट नहीं बनाई, नहीं तो हमने जब याद किया तब 30 का 30 एक साथ याद किया। ये 30 प्रकृतियां वहां बंधे विच्छित होती है, परंतु कहां से कहां तक इसमें डिफरेंस है, अंतर है, विशेष है, इसलिए इनका सूत्र अलग बनाया। तो उसका उत्तर देते हैं, ये उत्तर हमने पढ़ा, अभी नीचे उसका उत्तर पढ़ेंगे 36 नंबर का सूत्र का। अप्रमत्त संयत और र करना बरोबर और अपूर्व करण प्रविष्ट उपशामक चाहिए। उपशमक श नहीं दिख रहा है, उपशमक व क्षपक बंधक है। अपूर्व करण काल के संख्यात बहुभागों को बिताकर बंध विच्छिन्न होता है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। यह देशामर्शक सूत्र है क्योंकि वह बंधाध्वान यानी कहां से कहां तक, सातवें से लेकर आठवें के छठे भाग तक ये बंधाध्वान हुआ, और बंध विनष्ट स्थान का ही प्ररूपण करता है। विनष्ट स्थान कौन सा है, तो छठे भाग के अंत में वो विनष्ट हो जाते हैं। संख्यात बहुभाग कहा था वहां पर, हमें मालूम है, इसलिए छठे भाग की बात कर देंगे हम। शिष्य ने पूछा था कैसे जाना, तो आचार्य परंपरा से जाना है। हमने भी कहां से जाना, हमने ग्रंथों के आधार से ही जाना है। देखो तो यहाँ दो तीन ही बातें समझ में आई, बंधाध्वान है, बंध विनष्ट स्थान वगैरह, स्वामित्व, उसके आधार से अन्य भी प्ररूपणा भी करेंगे, इसलिए इसको देशामर्शक कहेंगे। इसी कारण इस सूत्र से सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं। इन दोनों प्रकृतियों का उदय, आहारक आहारक अंगोपांग का उदय पूर्व में विच्छिन्न होता है, कहाँ होता है, छठे में, पश्चात बंध, क्योंकि प्रमत्त संयत में इनके उदय के नष्ट हो जाने पर अपूर्व करण में बंध विच्छेद पाया जाता है। ये दोनों प्रकृतियां परोदय से बनती है, परोदय से ने जहां आहार द्विक का उदय नहीं है उसको परोदय कहा। परोदय ने वहां कौन से शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, औदारिक वैकरिक वाले को होगा कि नहीं, नहीं शपक को बंधेगी, शपक तो हम आठवें से शपक कहेंगे उसको, शपक चढ़ने वाले के सातवें में भी वो बंधेगी ना, छठा सातवां चलता रहा, किसी ने आहारक बनाया वो तो आहारक का वो तो शरीर भी बनेगा, फिर बाद में एक शपक श्रेणी चढ़ेगा, तो क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए जो बांधा है आप कहेंगे उसका क्या फायदा फिर हमें किसी की भी जरूरत नहीं है ये हम सारी चीजें जो इकट्ठे कर रहे हैं ना, वहां तो कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ दुनियादारी की सारी चीजें, वो किसी की भी जरूरत नहीं हमें, बिना जरूरत का मोह के साधन इकट्ठे कर रहे हैं, मोह से करते हैं और मोह और उसमें बढ़ता है ज्यादा। देखो ये क्या कहते हैं यहाँ इन दोनों प्रकृतियों का पूर्व में उच्छेद होता है बंध पश्चात, क्योंकि प्रमत संयत में इनके उदय के नष्ट हो जाने पर अपूर्व करण में बंध विच्छेद पाया जाता है। ये परोदय से चल रही बात, ये दोनों प्रकृतियां परोदय से बनती है क्योंकि आहारक द्विक के उदय से रहित अप्रमत्त संयतों में अर्थात अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुण स्थानों में ही लगाए ना, इनका बंध पाया जाता है। जहां स्वोदय नहीं है उसको भी परोदय कहेंगे, तो वहां किसी का तो उदय रहेगा, तो औदारी का औदारी अंगोपांग का उदय चल रहा है ना, उसके उदय में आहारक बंध रही है। उक्त दोनों प्रकृतियों का बंध निरंतर होता है, निरंतर की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, अंतर्मूर्त आदि, इसके कोई प्रतिपक्षी नहीं है, बन रही है तो अंतर्मूर्त तो बंधेगी ही बंधेगी, तो सातवें गुणस्थान में तो बंधेगी, फिर वापस छठे में आएगी तो नहीं बंधेगी, बाद में हो सकता है फिर सातवें में जाएगा तो फिर बन सकती है। तो उक्त दोनों प्रकृतियों का बंध निरंतर होता है, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के बिना इनके बंध का सद्भाव पाया जाता है। बंध में भले वो छठे सातवें में है तो अंतर पड़ेगा, उसकी बात नहीं है, प्रतिपक्ष के कारण ये बंध रुकता नहीं है, इसलिए इसको निरंतर कहा। अभी प्रत्यय कितने कितने हो गए, तो जो प्रत्यय सातवें आठवें से उसके हम गिनेंगे, मिथ्यात्व से नहीं गिनना अभी वहां तो बंध ही नहीं है, तो जहां बंध होता है कहां होता है, सातवें और आठवें में। हाँ, तो मूल प्रत्यय में ना मिथ्यात्व है ना अविरति है, और कषाय में भी कितने बाकी है, संज्वलन और नौ कषाय बाकी है, तो वो प्रत्यय हम उसको गिनेंगे वहां पर अधिक से अधिक में। और फिर योग में, हाँ अभी नौ गिनना है, मन के चार, वचन के चार और औदारिक, आहार के उदय में तो होता ही नहीं है। हाँ हाँ, सातवें आठवें की बात है, नवरे में। तो अभी यहाँ पढ़ते हैं, प्रत्यय प्ररूपणा में मूल व उत्तर नाना एवं एक समय संबंधी जघन्य उत्कृष्ट प्रत्यय ज्ञानावरण के समान ही कहना चाहिए। अब उस पर ये शंका पूछ रहे हैं, शंका, चार संज्वलन, नौ नौ कषाय और नौ योग में 22 ही आहारक द्विक के प्रत्यय है, तो सर्व अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतों में आहारक द्विक का बंध होना चाहिए। समझ में, जिसको आहारक का बंध नहीं हो रहा है उन जीवों में भी वही प्रत्यय है, और जिनके आहारक का बंध हो रहा है उनके लिए भी वही प्रत्यय है, तो सबको होना चाहिए था, ऐसा प्रश्न है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता, ये शंकाकारी स्वयं ही बता रहे हैं। अतएव अन्य भी प्रत्यय होना चाहिए, अन्य भी कुछ कारण होगा कि किसी को आहारक बनता है और किसी को नहीं बनता है, तो उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्य प्रत्ययों का मानना अभीष्ट है। फिर शंका, अभीष्ट है ने इष्ट है, वे अन्य प्रत्यय कौन से हैं जिनके द्वारा आहारक द्विक का बंध होता है, तो उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं, तीर्थंकर आचार्य बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय, बहुश्रुत है ने श्रुत में जो काफी जानकारी रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी वे उपाध्यायों को बहुश्रुत कहा, ज्ञानियों को बहुश्रुत कहते ना, श्रुत का जिनको अधिक अभ्यास है वे, तीर्थंकर आचार्य बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय और प्रवचन, इनमें अनुराग करना आहारक द्विक का कारण है। अन्य भी कुछ कारण है बताए ना उन्होंने, तो देखो यानी तीर्थंकर आचार्य बहुश्रुत प्रवचन इनमें अनुराग, ये भावनाएं आती है ना, अलग अलग भावना उसमें भी आते ही है, आचार्यों की आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये आदि, हाँ ये भावना हमने पहले देखी, हाँ अलग अलग ये भावना है, वो आहारक द्विक का कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमाद का अभाव भी आहारक द्विक का कारण है, क्योंकि प्रमाद सहित जीवों में आहारक द्विक का बंध पाया नहीं जाता। ये प्रमत्त तक तो बंद ही नहीं होगा हाँ, प्रवचन यानी आगम, प्रवचन भक्ति यानी जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है वो प्रवचन, हम पुस्तक पढ़ेंगे तो वो प्रवचन नहीं हुआ, भगवान की वाणी जो है प्रवचन यानी उत्कृष्ट वचन, जो जिनेन्द्र भगवान के ही हो सकते हैं। शंका, अपूर्वकरण के उपरिम सप्तम भाग में इनका बंध क्यों नहीं होता, छठे भाग तक ही क्यों होता है, ऊपर क्यों नहीं होता? नहीं होता क्योंकि वहाँ तीर्थंकर आचार्य बहुश्रुत और प्रवचन विषयक राग से उत्पन्न हुए संस्कारों का अभाव है, राग भाव कम है वहाँ। ये राग का कार्य है बंद होना, तो ऊपर के गुणस्थानों में वे राग के संस्कार कम हो जाते हैं। वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक तो राग है ही नहीं है, सात आठवें में उसके जो कोई संस्कार रूप कोई जो कुछ यथा योग्य राग चल रहा है उसके बाद वहाँ नहीं है। अब कौन से गति से संयुक्त बंधेगा? हाँ मनुष्य वाला, मनुष्य गति वाला है, वो स्वामी है, परंतु आहारक द्विज के साथ कौन सी गति बन रही है? तो दो गति। आहारक द्विक का बंध देव गति से संयुक्त होता है, यू करना यह हुआ, संयुक्त होता है क्योंकि अन्य गतियों के साथ उसके बंध होने का विरोध है। इनके बंध के मनुष्य ही स्वामी है क्योंकि अन्यत्र तीर्थंकर आचार्य और बहुश्रुत विषयक राग संयम सहित पाया नहीं जाता। संयम सहित एक शब्द डाल दिया बीच में, नहीं तो देव आएंगे सारे बीच में। देवों को भी तीर्थंकर और आचार्यों के प्रति बहुत भक्ति होगी, वो आते हैं ना कल्याणकों में, तो आते हैं, तो उनको भी प्रवचन का राग है, परंतु उनके विषयक राग संयम सहित पाए नहीं है। संयम संयम भी है और राग भी है, इनके प्रति अधिक राग है तीर्थंकर आदि के प्रति, उसके कारण ये बंध पाया जाता है। बंधाध्वान और बंध विनिष्ट स्थान सुगम है क्योंकि ये सूत्र में ही निर्दिष्ट है। अभी हमने देखा था ना कहां से कहां तक, सातवें से आठवें के छठे भाग तक। दोनों प्रकृतियों का सादिक और अध्रुव बंध होता है क्योंकि आहारक द्विक का प्रत्यय सादी और सपर्यवसान देखा जाता है। प्रत्यय ने इसके प्रत्यय कौन से है, अभी हमने देखा ना सातवें और आठवें के जो प्रत्यय है, या जो अभी हमने देखी राग है वो सादी होगा ना उसमें भी, और सपर्यवसान, पर्यवसान का अर्थ क्या होता है? पर्यवसाने ने अंत, सपर्यवसाने ने शांत, सादी शांत, ये पहले ये शब्द आया था। कोई मर जाता तो हम कहते उसका अवसान हुआ, देहावसान हुआ, ये पर्यवसान हुआ यानी नाश। स आदि यानी आदि सहित और नाश सहित यानी अंत सहित, उत्पन्न भी होता है और मिट भी जाता है, तो उसका कारण लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके बंध भी सादी और अध्रुव होगा। अब तीर्थंकर नाम कर्म की बात, तीर्थयर नामस्य को बंधो को अबंधो, ये सबको भी बंध बांधना चाहते हैं ना तो तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। अब ये कहां से कहां तक बनती है वो बात करेंगे। असंजद सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव अपूव करण पैठ व समा खवा बंधा, अपूव करण धाये संखेज्य भागे गंतुण बंधो वोच्छिज्यदि एदे बंधा अवशेषा अबंधा। असंयत समय दृष्टि से लेकर अपूर्व करण प्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक है। अपूर्व करण काल के संख्यात बहुभागों को बिताकर बंध विच्छिन्न होता है, वो व्यच्छिन्न हुआ है, विच्छिन्न होता है, ये बंधक है। शेष जीव अबंधक है, ये आठवें के छठे भाग में बंध विच्छित्ति होने वाली प्रकृति उसके साथ ये भी है। पहले 27 हमने देखे, फिर आहारक द्विक और तीर्थंकर, पर बंध कहाँ से होता है? चौथे से। यह हाँ आप ही बताओ, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले चारों गतियों वाले हो गए कि नहीं हो गए? मनुष्य गति हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो वहाँ तो शुरुआत होती है देव, हाँ देव भी बांधते क्योंकि वो तभी वहाँ से जयकर अभी तीर्थंकर होने वाले। नारकी बांधते कि नहीं बांधते? हाँ नारकी भी बांधते। तीर्यंच बांधेगी कि नहीं बांधेंगे? बोगभूमि वाले नहीं बांधेंगे, यानी जिसने तीर्यंच आयु का बंध किया है वो क्षायिक तो हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके नहीं होगा। हमने देखा शाही सम्य दृष्टि मरकर तीर इंच में जाता है। तीर्थंकर प्रकृतियों का बंद करने वाला नरक तो जा सकता है क्योंकि परिणय नरकायु बांधी है। हाँ, तो उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके नरक में भी गया। भले क्षायिक न हो तो भी तीसरे नरक तक भी जा सकता है, परंतु वो तीर्यंच के साथ उसके बंद का विरोध है। यह देशामर्शक सूत्र है क्योंकि वह स्वामित्व बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान का ही प्ररूपण करता है। इसी कारण से इसके द्वारा सूचित अर्थों का वर्णन करते हैं। वर्णन सादा न चाहिए, वर्णन दूसरा न है ना, वो नल वाला न चाहिए। करते हैं के बाद फुल स्टॉप। तीर्थंकर नाम कर्म का पूर्व में बंद विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय। हाँ पिनाक भाई, बंद कहाँ विच्छिन्न होता है और उदय कहाँ होता है उसका? तीर्थंकर प्रकृति की बात चल रही है, उदय कब होगा? तेरहवे चौदहवे में उदय है। उदय की विच्छित्ति चौदहवे के अंत समय में होगी। और बंद कहाँ पर नष्ट होता है जो अभी हम देख रहे हैं? नहीं, वो बंद कहाँ होता है उसकी बात नहीं, कहाँ रुकता है। अभी विच्छित्ति चल रही ना अपने, कौन से गुणस्थान में हो रही है? अब देखो पन्ना उलट कर देखो, 38वें सूत्र में नीचे, हाँ 8वें के संख्यात बहुभाग यानी छठा भाग तक, भले वो क्षपक हो या उपशमक हो, अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखो तो पहले बंद विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय, यानी बंद तो पहले होता है और उदय बाद में होता है। अब हमने आर्ग में क्या देखा, उदय पहले होता है नीचे के गुणस्थानों में और बंद ऊपर के गुणस्थानों में होता है। देखो क्योंकि अपूर्वकरण के छठे सप्तम भाग के छठे सप्तम है ना, छठवां भाग, सात में से छठा भाग, इसको छठे सप्तम कहते हैं। भाग के अंतिम समय में बंध के नष्ट हो जाने पर तीर्थंकर नाम कर्म का संयोग केवली के प्रथम समय में उदय का प्रारंभ करके, उदय कहाँ से है तो तेरहवें से, कितने समय के बाद? पहले ही समय में, अयोग केवली के अंतिम समय में उदय का विच्छेद पाया जाता है। इसका बंध परोदय से ही होता है। क्या तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? कभी भी तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए उसको कहते परोदय से होता है। क्योंकि जहाँ तीर्थंकर कर्म का उदय संभव है उन संयोग केवली और अयोग केवली जिनों में तीर्थंकर का बंध पाया नहीं जाता। बंध इसका निरंतर है क्योंकि अपने कारण के होने पर कालक्षय से बंध का विश्राम नहीं होता। कालक्षय से बंध का विश्राम नहीं होता है, हमने देखा था ना, अन्य इसके कोई प्रकृति दूसरी कोई है ही नहीं है, प्रतिपक्षी भी नहीं है। असंयत समय दृष्टि इसे दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं। कौन से दो गतियों से संयुक्त? चौथे गुणस्थान वाला तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है तो कौन सी गति बांधेगा? मनुष्य जो है तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला मनुष्य, वो देव गति के साथ बांध रहा है, नरक गति नहीं। चौथा गुणस्थान वाला चल रहा है, वो आपने नरक में जाने वाले की बात जो की थी वो तो उसने पहले नरक गति नरकायु बांधी थी, पर जब तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू होगा तो चौथे वाला है वो, तो चौथे वाले को नरक गति बनती नहीं है, ना ही तीर्यंच गति बनती है। तो वो देव गति के संयुक्त मनुष्य है, वो देव गति संयुक्त बांध रहा है। और जो देव है या नारकी है तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले, वो मनुष्य गति संयुक्त को बांध रहे हैं, इसलिए दो गति संयुक्त लिखा। लिखा ना असंयत समय दृष्टि, इसे दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का नरक व तिरंज गतियों के बंध के साथ विरोध है। देखो ये उनके साथ साथ वे नहीं बंधेगी, पहले बंधी हुई सत्ता में पड़ी उसकी बात नहीं हो रही। उपरिम जीव देवगति से संयुक्त बांधते हैं, उपरिम ने चौथे के आगे, क्योंकि मनुष्य गति में स्थित, अब यहाँ तिरंजों को लेना ही नहीं है क्यों तिरंज बांधते नहीं इसको, तो पांचवें गुणस्थान में भी अकेले मनुष्य गति वाले ही जीव लेना है और वे देवगति के संयुक्त ही बंध करते हैं। उपरिम जीव देवगति से संयुक्त बांधते हैं क्योंकि मनुष्य गति में स्थित जीवों के तीर्थंकर प्रकृति के बंध का देवगति को छोड़कर अन्य गतियों के साथ विरोध है। भले वो श्रेणी के राजा भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा था, उसके साथ देवगति को ही बांध रहा था। समय दृष्टि अवस्था में है ना, वो देवगति का बंध, पहले नरकायु नरक गति बांधी उसकी बात अब यहाँ नहीं लेना है, उसका उदय होगा बाद में जाकर उसकी भी बात नहीं है। तीन गतियों के असंयत समय दृष्टि जीव, इसके बंध के स्वामी कौन है, इनको बांधने वाले जीव कौन कौन से गति के जीव है, नारकी है, मनुष्य है और देव है। हमने देखा तिरंजों में ये तो जाता ही नहीं, उसकी सत्ता वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तिरंज में जाता ही नहीं है, तो अभी एक ही भव उसका अधिक से अधिक बीच में, यानी तीसरे भव में मोक्ष जाएगा ही। देखिए तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला मनुष्य है तो उसने पहले नरकायु नहीं बांधी होगी, तो देवायु ही बांधने वाला है, वो देव में जाएगा, देव में से मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर मोक्ष चला जाएगा। अभी है श्रेणी के राजा जैसे कोई है जिसने पहले नरकायु बांधी थी, बाद में समय दृष्टि हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, नरक में गया, वहां से आकर तीर्थंकर होगा और मोक्ष चला जाएगा। बिल्कुल तीर्थंकर प्रकृति का बंध की शुरुआत मनुष्य गति में ही होती है, देवगति में। हाँ, जिसने आयु का बंध किया, अभी ऐसे कोई जीव हो गए कि जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधी उसी भव में मोक्ष चले जावे, अब ये कहाँ होता है, तो विधेय क्षेत्र में होता है। भरत में जो है या ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं पांच कल्याणक वाले होते हैं, क्योंकि उसने पूर्व के मनुष्य भव में बांधी फिर देव में जाकर आए यहाँ, तो गर्भ कल्याणक भी होगा, ये जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अभी कोई विधेय क्षेत्र का ऐसा जीव है, चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें तक का कोई जीव जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया है, तो उसके तो गर्भ जन्म तो बीत चुका, तो चौथे से अभी कोई चौथा पांचवा वाला है तो उसने अभी दीक्षा नहीं ली है, तो उसके बाद में दीक्षा कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, तीन कल्याणक हो गए। कोई ऐसे हो गए पहले दीक्षा भी ली है, मुनि होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, तो उसके तो केवल ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण, दो कल्याणक हो गए। तो ये विधेय क्षेत्र वाले कोई तीर्थंकर दो कल्याणक वाले या तीन कल्याणक हो सकते हैं, चार वाले कोई हो गए कि नहीं हो गए? हाँ बोलो कैसे हो गए? यानी गर्भ होने के बाद जन्म होने के पहले पहले शुरू किया। नहीं, पांच कल्याणक वाले ही होते हैं, भरत ऐरावत में पांच कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, दो या तीन वाले नहीं होते। विधेय क्षेत्र में जैसे 20 तीर्थंकर हमेशा के रहते हैं और कभी कभी 170 भी तीर्थंकर होते हैं, वहाँ ऐसे 160 वहाँ होते हैं, भरत ऐरावत मिलकर 10। हाँ तो वहाँ हो सकते हैं ऐसे तीर्थंकर। देखो ये एक वाक्य पढ़ते, तीन गतियों के असंयत समय दृष्टि जीव इसके बंध के स्वामी है क्योंकि तिर्यक गति के साथ तीर्थंकर के बंध का अभाव है। इस पर बाकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मन मस्तक नवो सदा देत हूँ।